ओम शांति। 22 तारीख की मुरली है। पिछले कुछ दिनों से बाबा हम बच्चों को समय की चेतावनी दे रहे हैं। आज भी बाबा ने समय की वैल्यू भी बताई है, साथ साथ चेतावनी भी दी है। वापस घर जाना है ये भी याद दिलाया है, लेकिन जाने से पहले क्या क्या करना है वो भी सारी बातें आज पुरुषार्थ की विशेष बाबा ने अटेंशन दिलाई है। और बाबा क्यों आया है? बाबा ने कहा मैं आया ही हूं इस दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए। बाबा अकेला तो नहीं बनाएगा ना, क्योंकि सुख धाम में जाने वाले तो हम सभी हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है? तो बाबा ने कहा बच्चों को बाप का मददगार बनना है, जिसको कहते खुदाई खिदमतगार। लेकिन मददगार भी कौन बन सकते हैं? तो बाबा ने कहा जो देही अभिमानी होते हैं वही बाप के मददगार बन सकते हैं। देह अभिमानी कभी भी बाप के मददगार नहीं बन सकते। जो सर्विस एबल बच्चे हैं वही बाप के मददगार बनते हैं, और जो सर्विस करते ही नहीं है, बाबा ने मीठा ठपका भी लगा दिया, वो तो जैसे किसी काम के ही नहीं है। बाबा ने कहा बाप को याद कर विकर्म विनाश करने हैं, परंतु कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को भी याद नहीं करते हैं और फिर सच बताने में लज्जा भी आती है। तो यदि नई दुनिया में ऊंच पद पाना है तो बाप का मददगार भी बनना है, देही अभिमानी भी बनना है, सर्विस एबल भी बनना है, औरों को भी आप समान बनाना है। तो नई दुनिया में ऊंच पद पाने के टिप्स भी बता दिए। बाबा ने कहा जो सर्विस नहीं करते हैं तो जरूर वो कम पद पाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को समय के वार्निंग के साथ साथ वापस जाने की तैयारी में क्या क्या करना है और बाप किस लिए आए हैं ये सभी बातें बताई हैं। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह समय मोस्ट वैल्यूएबल है। छोटा सा जो संगम युग हम ब्राह्मणों को मिला है ये बहुत मोस्ट वैल्यूएबल है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो, थोड़े थोड़े नहीं, पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं, मददगार बच्चे ही ऊंच पद पाते हैं। प्रश्न है सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? देखो बाबा ने कहा सर्विसेबल बच्चे ये बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहां बहुत गर्मी है, यहां बहुत ठंडी है, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। वेदर उनको अड़चन नहीं बनेगी। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं, हम तो सहन नहीं कर सकते। इस दुख धाम में सुख दुख, सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, तभी तो राजा बन सकते हैं। बहानेबाजी नहीं करनी है। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर। क्यों धीरज धरे? तेरे सुख के भरे दिन आएंगे और क्या होगा, और क्या होगा? जो हो गया है, ये भक्तों को धीरज दिया गया है, हमारे साथ तो प्रैक्टिकल हो रहा है। सुख के भरे दिन आ गए हैं, भगवान मिला है, हमारी तकदीर का सूरज चमक गया है, हमारे अंदर से गम के बादल हट गए हैं। ओम शांति। बच्चे ही जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। इस जीवन में सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है, ना सारे सृष्टि चक्र का राज हम बच्चों को ही मालूम है। सो सिर्फ तुम ब्राह्मण ही नंबर वन पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। ये है ही दुख की दुनिया। इनमें थोड़े टाइम के लिए दुख सुख, निंदा स्तुति सब कुछ सहन करना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन किया सभी का, और फिर भी शीतल रहे। इसलिए कहते हैं सहनशील। ऐसे नहीं मैंने बहुत सहन किया है, नहीं, शीतलता उनसे सबको मिलती रही, ऐसे सहन करना है। इन सब से पार होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो कहते हम ठंडी में रहें। अब बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस करनी है। इस समय ये बहुत दुख की बात तो है नहीं, ये है ही दुख धाम। अब तुम बच्चों को सुख धाम में जाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। ये तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल समय है। इसमें बहाना चल ना सके। बाबा सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं, जो सर्विस करते ही नहीं है वो तो कोई काम के ही नहीं है। बात किससे कर रहे हैं? सर्विसेबल बच्चों से कर रहे हैं। यहां बाप आए हैं भारत को तो क्या, सारे विश्व को सुखधाम बनाने के लिए। तो ब्राह्मण बच्चों को ही बाप का मददगार बनना है। बाप आया हुआ है तो हमको क्या करना है? बाप आया हुआ है तो हमको उनकी मत पर चलना है। भारत जो स्वर्ग था सो अब नरक है, उनको फिर से स्वर्ग बनाना है। बाप की मत पर चल करके भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। ये भी अब मालूम पड़ा है। सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, बहुत सुखी थे। फिर अपवित्र राजाएं भी बनते हैं, धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो अपवित्र राजाएं भी बनते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से तो उनको भी ताकत मिलती है। अभी तो है ही न पवित्र राजाएं हैं न अपवित्र राजाएं हैं, अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। लेकिन ये कोई भारत की सेवा नहीं करते हैं, भारत की अथवा दुनिया की सेवा तो केवल एक बेहद का बाप ही करते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे, क्या कहा होगा इतना प्यार से, मीठे बच्चे, बाप के मददगार बनो। जो बाबा ने इतना बड़ा महान कार्य उठाया है उसमें हम अपनी उंगली का सहारा दे करके मददगार बने। क्यों मददगार बने, नहीं बनेंगे तो भी कार्य तो हो ही जाना है, क्यों बने मददगार, अपना ही श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए ये मौका मिला है। कितना प्यार से समझाते हैं, देही अभिमानी बच्चे समझते हैं। अब देह अभिमानी तो क्या मदद कर सकेंगे, क्योंकि माया की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अब बाप ने डायरेक्शन दिया है, सर्विसेबल बच्चों को, मददगार बच्चों को बाप ने डायरेक्शन दिया है। क्या डायरेक्शन दिया है, कि सबको माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से छुड़ाओ। तुम्हारा धंधा ही ये है। क्या धंधा बता दिया हम ब्राह्मणों का, माया की जंजीरों से, गुरुओं की जंजीरों से सबको छुड़ाना। तो बाप कहते हैं, मेरे जो अच्छे मददगार बनेंगे वो पद भी पाएंगे। बाप खुद सन्मुख कहते हैं, मैं जो हूं, जैसा हूं, साधारण होने के कारण मुझे पूरा जानते नहीं है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं ये नहीं जानते हैं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ये भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम समझते हो कि कैसे इन्होंने राज्य पाया और फिर कैसे गवाया। मनुष्यों की तो बिल्कुल ही एकदम तुच्छ बुद्धि है, क्योंकि कुछ भी जानते नहीं है इसीलिए तुच्छ बुद्धि है। और बाबा अभी हमारी स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाप आए हैं, किस लिए आए हैं, पहली बात बताई थी, बाप आए हैं भारत को तो क्या, लेकिन पूरे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने, जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। अभी दूसरी बात, बाप आए हैं किस लिए, सबकी बुद्धि का ताला खोलने के लिए। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने। तो बाप कहते हैं, अब मददगार बनो। जो पारस बुद्धि बने हैं, बन रहे हैं, उनको कहते अब मददगार बनो। लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं, परंतु मददगार तो बनते नहीं हैं। लौकिक में भी ये शब्द लोग यूज करते हैं, खुदाई खिदमतगार उर्दू का शब्द है। खुदा आकर जिनको पावन बनाते हैं उनको ही कहते हैं अब औरों को भी आप समान बनाओ, श्रीमत पर चलो। बाप आए ही हैं किसलिए? तीसरी बात, बाप आए ही हैं किसलिए? सबको पावन स्वर्गवासी बनाने के लिए। लोग तो डरते हैं ना, किसी को कहो आपको स्वर्गवासी बनाए तो घबरा जाएंगे, लेकिन ये हम बच्चे ही जानते हैं राज को। तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो ये है मृत्यु लोक। बैठे बैठे अचानक मृत्यु होती है तो क्यों ना हम पहले से ही मेहनत कर बाप से पूरा वर्षा ले, अपना भविष्य जीवन बना लेवे। समझदारी तो इसमें जब मालूम पड़ गया है तो। मनुष्यों की जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तो समझते हैं अब भक्ति में लग जाए। जब तक वानप्रस्थ अवस्था नहीं है तब तक खूब धन आदि कमाते हैं। अभी तुम सबकी तो है ही वानप्रस्थ अवस्था, तो क्यों ना बाप का मददगार बन जाना चाहिए, दिल से पूछना चाहिए। हम बाप के मददगार बने हैं। सर्विसेबल बच्चे तो नामी ग्रामी है, अच्छी मेहनत करते हैं, योग में रहने से ही सर्विस कर सकेंगे। अकेली सेवा भी काम नहीं लगेगी, दोनों का बैलेंस चाहिए। योग में रहने से ही सेवा की भी इफेक्ट होती है। याद की ताकत से ही सारी दुनिया को पावन बनाना है। सारे विश्व को तुम पावन बनाने के निमित्त बने हुए हो। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसका भी बाबा एहसास करा रहे हैं कि सारे विश्व को पावन बनाने के हम ब्राह्मण बच्चे निमित्त बने हुए हैं। तुम्हारे लिए फिर पवित्र दुनिया जरूर चाहिए। हम स्वयं को भी पवित्र बनाते, सारी दुनिया को भी पवित्र बनाते तो फिर बाबा कहते तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया भी चाहिए। इसीलिए पतित दुनिया का विनाश होता है। अभी सबको यही बताते रहो कि देही अभिमानी बनो, अर्थात देह अभिमान छोड़ो। एक बाप को ही याद करो, वही पतित पावन है। सभी याद भी उनको करते हैं, भले जाने या ना जाने, लेकिन याद तो सभी धर्म वाले उनको करते हैं। साधु संत आदि सब उंगली ऐसे इशारा करते हैं, ऊपर की तरफ उंगली से इशारा करते हैं कि परमात्मा एक है, वही सबको सुख देने वाला है। ईश्वर अथवा परमात्मा कह देते हैं परंतु उनको जानते तो कोई भी नहीं है सिवाय बाबा के बच्चों के। कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई अपने गुरु को याद करते रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वह सब है भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग भी आधा कल्प चलना है। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब नीति नीति करते आए, रचयिता और रचना को हम नहीं जानते। बाप कहते हैं वह त्रिकालदर्शी तो है नहीं, बीज रूप ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। वो आते ही भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हैं और गीता जयंती भी मनाते हैं। तो कृष्ण को याद करते हैं क्योंकि शिव को तो जानते ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं पतित पावन ज्ञान का सागर तो मैं ही हूं। कृष्ण के लिए तो कह ना सके गीता का भगवान कौन, ये बहुत अच्छा चित्र है। बाप ये चित्र आदि सब बनवाते हैं बच्चों के कल्याण के लिए। शिव बाबा की महिमा तो कंप्लीट लिखनी चाहिए। एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र उसकी महिमा, दूसरी तरफ शिव बाबा का चित्र और उनकी महिमा, तो अपने आप ही अंतर मालूम पड़ जाए। सारा मदार इन पर है। ऊपर से जो भी आते हैं वो पवित्र ही है। परमधाम से सारे सृष्टि चक्र के अंदर जिस भी समय जो आत्मा उतरती है वो पवित्र है। पवित्र बनने बिगर कोई जा ना सके। मुख्य बात है पवित्र बनने की, वह है ही पवित्र धाम जहां सभी आत्माएं रहती हैं। यहां तुम पार्ट बचाते बचाते पतित बने हो। जो सबसे जास्ती पावन वही फिर पतित बने हैं। देवी देवता धर्म का नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता धर्म बदल हिंदू नाम रख दिया है। तुम ही स्वर्ग का राज्य लेते हो और फिर गवाते हो। हार और जीत का खेल है ना। माया ते हारे हार है, माया ते जीते जीत है। मनुष्य तो रावण का इतना बड़ा चित्र कितना खर्चा करके बनवाते हैं और फिर इतना खर्चा किया और एक ही दिन में खलास कर देते हैं। एक दिन भी नहीं लगता खलास होने में। दुश्मन है ना, लेकिन ये तो गुड़ियों का खेल हो गया। शिव बाबा का भी चित्र बनाए पूजा कर फिर तोड़ डालते हैं। देवियों के चित्र भी ऐसे बनाए फिर जाकर के डुबो देते हैं। कुछ भी समझते नहीं है। अब तुम बच्चे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो कि दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। सत्युग त्रेता का किसी को भी पता नहीं है। देवताओं के चित्र भी कितने ग्लानी के बना दिए हैं और उसको आर्ट समझते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे क्या करें, क्या शिक्षा दी होगी बाबा ने। मीठे मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनने के लिए बाप ने तुम्हें जो परहेज बताई है वो परहेज करो। उसमें भी विशेष याद में रह करके भोजन बनाओ, योग में रह करके भोजन खाओ। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, किसी के द्वारा नहीं कहला रहे हैं। बाप खुद कहते हैं क्या, मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक फिर से बन जाएंगे। बाप भी फिर से आया हुआ है, अब विश्व का मालिक पूरा बनना है। फॉलो फादर मदर। सिर्फ फादर तो हो नहीं सकता। सन्यासी लोग तो कहते हैं हम फादर हैं, शिवो हम कहते, अर्थात खुद को फादर ही कहते। आत्मा सो परमात्मा, वह तो रॉन्ग हो जाता है ना। यहां मदर फादर दोनों पुरुष शर्त करते हैं, फॉलो फादर मदर। ये अक्षर भी यहां के हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जो विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, अब पुनर्जन्म लेते लेते अपवित्र बने, फिर से पवित्र बन रहे हैं। हम भी उनकी श्रीमत पर चल ये पद प्राप्त करते हैं। वो इन द्वारा डायरेक्शन देते हैं, उस पर चलना है। फॉलो नहीं करते तो सिर्फ जो बच्चे मदर फादर को फॉलो नहीं करते वो सिर्फ मम्मा बाबा कहे मुख मीठा करते हैं। फॉलो करने वाले को ही सपूत बच्चा कहा जाता है। जानते हो मम्मा बाबा को फॉलो करने से हम राजाई पद में जाएंगे। ये समझ की बात है। बाप सिर्फ कहते हैं, सिर्फ कहते, ज्यादा कुछ नहीं। क्या मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस ज्यादा तो कुछ काम है ही नहीं। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, बस। और कोई को भी यह समझाओ तुम कैसे 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हो और फिर पवित्र बनना है, तो जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। बहुत याद करने वाले ही नई दुनिया में पहले पहले आएंगे। फिर औरों को भी आप समान बनाना है। प्रदर्शनी में मम्मा बाबा समझाने के लिए नहीं जा सकते। बाहर से कोई बड़ा आदमी आता है तो कितने ढेर मनुष्य जाते हैं उनको देखने के लिए कि ये कौन आया है, ये तो कितना गुप्त है। बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन से बोलता हूं, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूं। कितनी बड़ी जिम्मेवारी बाबा लेते, मैं ही इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबल हूं। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो। हम आत्मा है, आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। ये नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगानी चाहिए। सिर्फ दुनियावी बातों में ही बुद्धि होंगी तो गोया कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही बदतर हैं। बीच बीच में ठपका मारता जाता है, मीठा मीठा है ना, जिसको बाबा कहते मखमल का जूता। तो बाबा ने कहा अगर दुनियावी बातें ही बुद्धि में चलती रहेंगी तो बिल्कुल ही जैसे बदतर है। परंतु ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो करना ही है। स्वर्ग में जाएंगे तो ऊंच पद नहीं, सजाए खा कर जाएंगे। ऊंच पद कैसे पाएंगे ये तो बाप ने समझाया है। एक तो स्वदर्शन चक्रधारी बनो और औरों को भी बनाओ। योगी भी पक्के बनो और बनाओ। उच्च पद पाने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी खुद भी बने औरों को भी बनाए, पक्के योगी बने औरों को भी योगी बनाए। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। सच बोलते हैं यूं तो बाबा के सामने, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अरे लज्जा नहीं आती है। बाप को भूल जाते हैं, लज्जा नहीं आती है। बहुत है जो सच भी बताते नहीं है, भूलते बहुत हैं, बाप ने समझाया है, कोई भी आए उनको बाप का परिचय दो, तो खुद को भी बाबा की याद रहेगी। अब 84 का चक्कर पूरा होता है, वापस जाना है। राम गयो, रावण गयो, जाके बहु परिवार। इसका भी अर्थ कितना सहज है, जरूर संगम युग होगा। जो कहावत है इस संगम युग की है, जबकि राम का और रावण का परिवार है। ये भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। कैसे तुमको राज्य मिलता है वो भी थोड़ा आगे चल सब मालूम पड़ जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे ना, फिर वह तो खेल हो ना सके। कुछ तो सस्पेंस रखना ही पड़ेगा ना बाबा को, समय अनुसार बताएंगे। तुमको साक्षी हो देखना है, साक्षात्कार होते जाएंगे। इस 84 के चक्कर को दुनिया में कोई भी जानते नहीं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, क्या है बुद्धि में हमारे, चक्र को जानते हैं ना, तो उस हिसाब से हमारी बुद्धि में क्या है कि हम सबको वापस जाना है, कि अंत समय आकर के पहुंचा है तो वापस जाना है। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है, फिर अपनी राजधानी में आएंगे, बाकी थोड़े रोज हैं। ये चक्र फिरता रहता है ना, अनेक बार ये चक्कर लगाया। अब बाप कहते हैं जिस कर्म बंधन में फंसे हुए हो उसको भूलो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भूलते जाओ। अब नाटक पूरा होता है, बाबा समय की वार्निंग दे रहे हैं। नाटक पूरा होता है, अपने घर जाना है। इस महाभारत लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं, इसीलिए बाबा ने कहा है ये नाम बहुत अच्छा है। क्या? गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लड़ाइयां तो चलती आई हैं, बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी है क्या? ये मूसलों की अंतिम लड़ाई है, मिसाइल्स की ये अंतिम लड़ाई है। 5000 वर्ष पहले भी जब लड़ाई लगी थी तो ये यज्ञ रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, नई राजधानी की स्थापना हो रही है। तुम ये रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो राजाई पद पाने के लिए, तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो कोई काम नहीं आनी है, शास्त्र भी कोई काम नहीं आएंगे, तो क्यों ना इस धंधे में लग जाना चाहिए। जो जो काम का नहीं है उसको छोड़ करके जो काम का है उस धंधे में लग जाना चाहिए। बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं, विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। विशेषकर बाबा यूथ को कह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई पढ़ते हैं तो विचार करना चाहिए कौन सी पढ़ाई में लगे। वह तो थोड़े डिग्रियों के लिए पढ़ते हैं, तुम तो पढ़ते हो राजाई पद के लिए। कितना रात दिन का फर्क है, वो पढ़ाई पढ़ने से क्या मिलेगा, भुगरे मिलेंगे। अब अल्पकाल की कमाई मन की भुगरे चले, पता थोड़े ही है किसका शरीर छूट जाए तो भुगरे भी गए, पढ़ते पढ़ते ही चला जाए तो अल्पकाल के भुगरे भी गए। ये कमाई तो साथ चलने की है, मौत तो कहां है, पहले सामने था अभी हम आगे नहीं बढ़े तो वो आगे बढ़ करके सिर पर आ गया है। पहले हम अपनी पूरी कमाई कर ले, ये कमाई करते करते दुनिया ही विनाश हो जानी है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी तभी विनाश होगा। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में क्या, उनकी मुट्ठी में क्या है? भूंगरे, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? और हमारी मुट्ठी में क्या है? हमारी मुट्ठी में क्या है? विश्व की बादशाही। तो जो भी मनुष्य मात्र है उनकी मुट्ठी में है भूंगरे, उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम रतन ले रहे हो, इन भूंगरों से ममत्व छोड़ो। ऐसा नहीं एक मुट्ठी में रतन ले ले, एक मुट्ठी में भूंगरे भी ले ले, नहीं, छोड़ो, रतन लो। अब अच्छी रीति जब समझते हैं तब भूंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। छोड़ना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता है। एक बार नौकरी लग जाती है कन्याएं, फिर वो पैसा हाथ में आने लगता है ना, भावनाएं बहुत अच्छी होती है कि बाबा के यज्ञ में हम धन से मददगार बने, हम बाबा के यज्ञ में हर सेवा में भी मददगार रहे। लेकिन वो पूरा समय तो नहीं दे सकते हैं, किसी की मजबूरी होती है वो एक अलग बात है कि घर में कोई ऐसा कमाने वाला नहीं है या कोई ऐसी उसको तकलीफ है जो समर्पित नहीं हो सकती है, लेकिन अपनी इच्छा से कर रहे हैं उसमें वो घाटा डाल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा जब अच्छी रीति समझते हैं तब भूंगरों की मुट्ठी को छोड़ते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। जनों के पीछे समय नहीं गंवाना है, जनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। दूसरी पॉइंट, अब नाटक पूरा होता है, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। मदर फादर को फॉलो कर, राजाई पद का अधिकारी बनना है। मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। आज का वरदान है, संकल्प को भी चेक कर, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहां भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। सब फॉलो करने वाले इसलिए अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अव्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अव्यक्त ईश्वर है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग है ही कंबाइंड रहने का युग। बाप से अकेले हो नहीं सकते, सदा के साथी हो। सदा बाप के साथ रहना अर्थात सदा संतुष्ट रहना। बाप और आप सदा कंबाइंड हो तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। कंबाइंड भी कौन है हमारे साथ? सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो कंबाइंड की शक्ति बहुत बड़ी है। एक कार्य के बजाय हजार कार्य कर सकते हो, क्योंकि हजार भुजाओं वाला बाप आपके साथ है। ओम शांति।
ओम शांति। हम सभी देख रहे हैं, कुछ दिनों से आदरणीय गीता दीदी जी हम सभी के साथ में हैं। आज दूसरी बार प्यारे बाप दादा के महावाक्य हम सभी को सुनाए, और यहाँ हाथ उठाएं जो दीदी को जानते हैं अच्छे से। बहुत काम है, बहुत काम है, और आज थोड़ा सा क्लास जल्दी पूरा हुआ है। तो दीदी, हम सभी की इच्छा है कि आप थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाए। दीदी जी विशेष अपनी सेंटर की सेवाओं में से समय निकाल करके मधुबन में भट्टी को संभालने के लिए, अपनी सेवा देने के लिए कुछ समय के लिए मधुबन आए हैं। पहला ग्रुप आपने संभाला, अभी अगला भी ग्रुप आएगा जो दीदी जी संभालेंगे, और उसके बाद फिर जाएंगे। आप नवसारी में रहते हैं, गुजरात का नवसारी, और नवसारी में आपके कनेक्शन में कई सेवा केंद्र भी है जिनका आप संचालन करते हैं। तो और आपका जो परिवार है वो भी विशेष है, फैमिली बैकग्राउंड हम तो इतना ही जानते हैं कि त्यागी जी और जो साकार बाबा मम्मा से पालना में पले हुए दिल्ली मेरठ एरिया से, लेकिन थोड़ा विस्तार से आपका परिचय और अनुभव हम सभी जानना चाहेंगे। गीता दीदी जी।
ओम शांति। यूं तो मधुबन में आना ही होता है, बार बार आना होता है, और ये पांडव भवन तो जब आते हैं तो हमको हमारे बचपन की याद दिला देता है, क्योंकि हमारा बचपन यहां ही बीता है। वैसे तो ज्ञान में मैं अभिमन्यु हूं, मेरे जन्म के साथ ही माता पिता ने ज्ञान लिया और मेरा जन्म हुआ, तब मम्मा बाबा यहां साकार में थे। तो जब पहली बार मधुबन मुझे लाया गया तब सिर्फ 6 मास की थी, और बाबा की गोद में दिया मुझे तो बाबा ने थोड़ी देर दृष्टि दी, मुझे पता नहीं है लेकिन मुझे बताते थे दादी, कमल सुंदरी दादी और सब लोग, तो कहते बाबा ने दृष्टि दी थोड़ी देर और फिर कहा कि ये यज्ञ की गई हुई आत्मा है और यज्ञ में ही आनी है, और हमारे लौकिक पिताजी जो यज्ञ में त्यागी जी के नाम से जाने जाते, उनको कहा तुमको ये अमानत दी है बाबा ने संभालने के लिए, क्योंकि हमारे लौकिक परिवार में 5 पीढ़ी से कोई कन्या ही नहीं थी, और हमारी दादी तो बहुत भक्ति पूजा करती थी और भगवान से कहती थी कि मुझे एक कन्या तो दे, मेरी जो जा करके बैठना ये पक्का ही था, तो मुरली में आता था भक्ति दुर्गति है इस तरह से, तो समझ तो पूरी नहीं थी लेकिन बुद्धि में ये हो गया था भक्ति दुर्गति है। तो हम छोटे छोटे बच्चे, पास में मंदिर था तो वहां मंदिर में हम खेलते खेलते जाते थे, तो जैसे वो लोग ऐसे बैठ करके भगवान की कुछ आरती पूजा करते होते थे उनको हम पीछे से धक्का दे आते थे, भक्ति दुर्गति है, पता नहीं था ना, हमने तो भगवान के महावाक्य सुने बस वही पक्का था। फिर किसी की वो धूप अगरबत्ती वो बुझ जाती थी ना तो वो फिर जलाए आते थे, बेचारे की बुझ गई है भगवान को खुशबू नहीं जा रही है तो वो जलाए आते थे। और जब प्रसाद का टाइम होता था तो ये तो हमको पता था बाहर का खाना नहीं है, तो पंडित जी को चिढ़ा करके और फिर भाग आते थे। तो ये स्पष्ट बुद्धि में नहीं था, बचपना था, जो सुना बस वो फॉलो करना है ऐसे था, भक्ति दुर्गति पक्का हो गया था एकदम। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमको दादियों की पालना मिली, ये ज्ञान मिला, आई थिंक मुझे याद है मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी तब से मैं मधुबन आ रही हूं। तो पहले तो हम गिनते थे, तो जो 2 महीने की वैकेशन होती है, वहां गर्मी बहुत पड़ती है ना दिल्ली मेरठ की साइड में, 2 महीने की वैकेशन होती थी तो पेरेंट्स आए या ना आए लेकिन हमको मधुबन जाना ही है, बाबा के पास जाना है, क्योंकि बाबा की हमको बहुत अट्रैक्शन होती थी, इतनी अट्रैक्शन होती थी, ज्ञान नहीं था, ये भी समझ नहीं थी कि इनमें भगवान है, ये भी पता नहीं था, इतने छोटे थे ना, बस बाबा जैसे खींचता था हमको, तो हमको ऐसे होता था हम बाबा के पास जाएं, बाबा के पास जाएं। मुरली क्लास तो करते थे, उसके बाद फिर ऐसा होता था हम बाबा के पास जाएं, बाबा के रूम में जाएं। लेकिन लच्छू दादी जो बाबा की संभाल करती थी वो अपनी रीति से राइट थी, तो वो हमको बार बार कहती थी अभी नहीं आना है, अभी नहीं आना है, तुमको जब बाबा को मिलाना होगा ना मैं बुलाऊंगी। तो हमको लच्छू दीदी के भी ईर्ष्या आ जाती थी कि ये बाबा के पास रह सकते हैं और हम क्यों नहीं रह सकते हैं। इतना हमको अंदर में आता था कि ये क्यों हमको ना बोलते हैं, इनका बाबा है तो हमारा भी तो बाबा है। पर ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, बचपना था। तो माना कि वो स्नेह बाबा का खींचता था। तो जैसे ही लच्छू दादी इधर उधर थोड़ी भी हो जाती थी ना, तो हम एकदम चप्पल निकाल करके दबे पैर बाबा के रूम में घुस जाते थे। तो बाबा अभी भी जो बाबा का रूम है वो आधे से भी छोटा था, और जो चारपाई है वो उसी ही रीति से है, जो बाबा की गद्दी है उसी ही रीति से है। तो हम कुछ भी नहीं बोलते थे, बिल्कुल आवाज नहीं करते थे। बाबा चारपाई पर लेटा होता था और हम बिल्कुल धीरे से चारपाई के नीचे जाकर के बैठ जाते थे। पता नहीं हमको क्या सुकून मिलता था वो चारपाई के नीचे। अभी भी कभी कभी मन हो जाता है यहाँ घुस जाऊं चारपाई के नीचे, वो याद आ जाती है। अभी तो घुस नहीं सकती, बड़ी हो गई। तो कहने का तात्पर्य है, ज्ञान योग की इतनी प्रकाष्ठा नहीं है, ज्ञान योग की गहराई को समझा नहीं है, फिर भी क्यों बाबा की अट्रैक्शन होती थी? वो बाबा की पावर, बाबा खींचता था हमको। तो जैसे नीचे जाकर के बैठते थे, थोड़ा समय होता था, 3-4 मिनट, आई थिंक 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, और बाबा को पता नहीं कैसे मालूम पड़ता था। बाबा की तो आंखें बंद होती थी जब हम घुसते थे अंदर, और धीरे से नीचे नीचे ही चले जाते थे। तो बाबा इसे हाथ करता था चारपाई के नीचे, हाँ बच्ची आ गई हो, नाम सहित गीता बच्ची आ गई हो। हमको तो इतना इतना अपार खुशी होती थी कि बात मत पूछो, बस बाबा का हाथ पकड़ लेते थे, बाबा चारपाई से नीचे से ऊपर ले लेते थे अपनी चारपाई पर, और बाबा की रजाई में बस बाबा के साथ लिपट करके सो जाते थे। क्या सुकून मिलता था ये पता ही नहीं, भगवान के साथ सो रहे हैं ये कुछ पता नहीं, जिससे कि अनजाने में ही इतनी गहरी पालना बाबा ने हमको दे दी। और बाबा तो बहुत आराम नहीं करते थे, थोड़ी देर के बाद बाबा तो उठ करके चले जाते थे, हम आराम से बादशाह बन के सोए पड़े हैं बाबा की रजाई में, बाबा की चारपाई पर। लच्छू दादी आती थी, अरे शैतान तुम कहां से घुस गई? तो हम उनको चिढ़ा करके, इतनी अक्ल नहीं थी ना कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कितनी महान आत्मा लच्छू दादी, लेकिन वो बचपना पता ही नहीं था, लच्छी नहीं अच्छी ऐसे कह करके भाग जाते थे। तो कहने का तात्पर्य बाबा न सिर्फ बड़ों को, बड़ों के प्रति ध्यान देता था, बाबा छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को भी जानता था, और उस अनुरूप बाबा पालना देता था। और ऐसी तो अमिट छाप बाबा की हर एक के ऊपर लग जाती थी कि आप सारे विश्व में घूम लो, वो पर्सनैलिटी, लौकिक अलौकिक पर्सनैलिटी, इनर पर्सनैलिटी कहां भी विश्व में मिल नहीं सकती, किसी में आंख डूब नहीं सकती। वो बाबा की पालना का इतना बड़ा प्रभाव कि हम पढ़े भी, ग्रेजुएशन किया, यूं तो 10वीं के बाद ही यज्ञ में आना था, लेकिन दादी ने कहा नहीं नहीं इसको भी ग्रेजुएशन तो कराओ, अभी यज्ञ में पढ़े लिखो की आवश्यकता है। तब हमको भी इतना वो नहीं था कि पढ़ना लिखना चाहिए, सब तो बाबा के बन रहे हम भी बन जाए, लेकिन दादियां भी हमारे भविष्य को जानती हैं। तब थोड़ी पता था ये कंप्यूटर का ज्ञान आएगा, पढ़े लिखे तो हम खुद ही कंप्यूटर सीख गए, सब कुछ करने लग गए। तो दादी की श्रीमत से हम पढ़े और फिर 1975 में बाबा के यज्ञ में आए। पहले से ही ये एक लक्ष्य था कि मुझे लौकिक घर से दूर जाना है, क्योंकि एक ही एक बेटी थी इसलिए माँ का मोह बहुत होता है, भले ज्ञानी थी लेकिन मोह बहुत होता है। तो रोज रोज घर के समाचार मिलते रहेंगे, घर के पास रहेंगे तो फिर वो बुद्धि जाती है, इसलिए लक्ष्य यही रहा कि दूर ही रहना है। इसलिए फिर सबसे पहले पहले हम पंजाब में गए, जहाँ की भाषा भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं आता था, और वहाँ हमको राजबेन जी ने बहुत अच्छी हर प्रकार से ट्रेनिंग दिया। फिर जब यहाँ समर्पण समारोह हुआ तो फिर जानकी दादी ने कहा, अब तुमको ये नहीं दूंगी, तुमने इसको समर्पित किया है ना। और दादी का लक्ष्य था सैन फ्रांसिस्को भेजने का, लेकिन उस समय काफी बहनें रिटर्न आई थी, तो हमने दादी को कहा इंडिया में किसी भी कोने में रह सकते हैं लेकिन सैन फ्रांसिस्को नहीं जाएंगे, फॉरेन नहीं जाएंगे। तो फिर दादी ने मुझे बॉम्बे भेजा, मेरी जगह अंशुला को वहां भेजा, और फिर वो भी वापस आई तो हमको और पक्का हो गया, अच्छा हुआ हम फॉरेन नहीं गए। फिर दादी ने वहां से वापस बुलाया, और दादी को आवश्यकता थी, मतलब बचपन से ही जैसे दादियां कहते गए वैसे ही करते गए, सिर्फ एक विदेश जाने के लिए जरूर ना बोला, और कभी ना नहीं बोला हमने। हालांकि हमको बहुत लोग बोलने लगे, तुम क्या ना बोलती हो, किसी को चांस नहीं मिलता है, तुमको चांस मिल रहा है, दादी सामने से ऑफर कर रही है, लेकिन मन ही नहीं करता था कि हम जाएं, इसलिए हमने दादी को ना बोला। बाकी लाइफ में कभी किसी बात पे हमने बड़ों को ना नहीं बोला, ये पाठ हमने हमेशा पक्का रखा। फिर तो दादी को जो प्रेरणा आई, दादी को आवश्यकता थी नवसारी पे, तो वहां भेजा, और दादियों के साथ जैसे कि हम बच्चे की तरह ही व्यवहार में आते थे, हमको ये भी पता नहीं था इतनी बड़ी महान दादियां हैं। तो जाने से पहले मैं जानकी दादी जी को मिली इंद्रप्रस्थ में, मैंने दादी को कहा, दादी मुझे बड़े दादी कहीं नवसारी भेज रहे हैं, मुझे पता नहीं कहाँ आया। दादी ने कहा, मैं तो हाँ जी कर दिया, अब क्या करूं, कहाँ जाना है मुझे पता ही नहीं। दादी कहते, तो बहुत अच्छा है, तू जाने नवसारी। मैंने कहा, दादी मैं जाऊं तो मैं आपको बुलाऊंगी, आप आएंगे? ऐसे बच्चों की तरह ही बात करते, हाँ तू जा, दादी जरूर आएगी। और सचमुच मैं वहां गई, अधिकतर सभी नवसारी में विदेश के ही भाई बहने हैं, विदेश में मैं नहीं गई लेकिन वहां विदेश के ही भाई बहने सभी मुझे मिले। और उस समय 10 वर्ष पूरे हो रहे थे नवसारी को, तो मैंने दशाब्दी समारोह इससे करके प्रोग्राम बना दिया, और मैंने दादी को एक ही बार कॉल किया और दादी ने तुरंत हाँ कहा, कितनी खुशी की बात थी। और दादी ने अपना पूरा वायदा निभाया, जानकी दादी वहां पर आए और बड़े धूमधाम से वहां दशाब्दी समारोह मनाया, और ये 40 वर्ष की वहां की यात्रा पूरे करते करते नवसारी को 50 वर्ष हुए, और अभी गोल्डन जुबली मनाई गई मार्च में, जिसके निमित्त जयंती दीदी को भी वहां बुलाया गया, जो जानकी दादी की ही प्रतिमूर्ति है। तो बहुत ही धूमधाम से वहां भी ये गोल्डन जुबली का कार्यक्रम हुआ। तो अनुभव तो बाबा के साथ के बहुत है, सुनाऊंगी तो सारा दिन बीत जाएगा, तब भी पूरे नहीं होंगे, यहाँ पर ही पूरा करती हूँ, फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति।
बहुत 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 सुंदर, कितने हृदय को स्पर्श करने वाले और मार्मिक अनुभव दीदी जी ने हमें सुनाए। कौन है जो दीदी के साथ बाबा की गोद में भी गए, खटिया के नीचे भी गए और रजाई में बाबा के बाद साथ भी सोए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत सुंदर अनुभव आपने हम सबको सुनाया, और संगम युग की मौजों का अनुभव थोड़े ही पल में बहुत गहरा करा दिया। और जोरदार ताली और एक हाथ की ताली भी दीदी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट बाबा की याद में बैठ के क्लास संपन्न।